نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دور قرآن 2023 ہر وقت کہتے ہوئے تیرا منہ سے نکلنے لگتا ہے بلیو می میں ایک سیکنڈ کے لیے رکتی ہوتی ہوں اور پھر سوچتی ہوں کہ 13 نہیں 23 اس طریقے سے وقت پر لگا کے گزر رہا ہے اور میری آپ کی زندگی گزر رہی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا. آپ دیکھیے کیسے دیپارے گزر گئے, کیسے رمضان گزرتا جا رہا ہے, پتہ لگ رہا ہے؟ وہ جو پورا سال ایک ہوا ہوتا ہے, ہائے روزوں میں یہ ہوگا, رمضان آئیں گے تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی یہ مشکل رمضان ہے؟ الحمدللہ تو زندگی بھی تو ایسی گزر رہی ہے نا. ہر رمضان آپ کے میرے لیے موت کا پیغام بھی ہے کہ جس طرح تمہیں رمضان کے آنے اور اس کے گزر جانے کا پتہ نہیں چلا, زندگی کہاں گئی؟ سوچیے اپنے بچپن کو کدھر ہے, پھر جوانی, وہ دیڑھ عمر, دل نہیں کرتا کہ وقت ادھر ہی رک جائے؟ تو ہم سب ایک چکر میں گئے ہوئے ہیں. اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے اپنی زندگی کا فائدہ لینے والا بنائے. مقصد کے ساتھ جئیں گے تو زندگی میں بڑی خیر ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم دور قرآن میں شروع کریں گے سبحان الذی میں سے سورۃ الکہف کو ہم کنٹینیو کریں گے رکوع نمبر 17 سے جو آیت نمبر 32 سے ہے. اس سے پہلے جو سورت کا حصہ ہم پڑھ چکے اس پہ چند جملے بول کر ہم ڈائریکٹ چلیں گے تاکہ باقی چیزیں پھر ہم آیات کے ساتھ ساتھ چلیں. ہم نے سبحان الذی یعنی پارہ 15 کو جس تھیم پہ لیا وہ اس سال کیا ہے کہ عظمت صحابہ کیوں تھی, اس لیے کہ وہ قانونی حد سے بڑھ کر ساتھ دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی اپنی موت تک. انہوں نے صرف لکھت پڑھت کو اور یہ اور وہ اور نہیں رکھا, اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت کچھ لکھ پڑھ کے آنے پائی کا حساب کرنا یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے اور نہ یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کے نظام میں کثرت ہے, کتنے پتے لگ کر گر جاتے ہیں اللہ کو پرواہ بھی نہیں. ہمیں تو نہیں حکم کہ ہم چیزوں کو ضائع کریں, اور اللہ نے کائنات میں اگر ایک چیز کو بظاہر ضائع ہوتے ہوئے دکھایا بھی ہے تو وہ دوسری چیز میں کنورٹ ہو رہا ہے. یہ فطرت کا بھی اصول ہے اور سائنس کا بھی اصول ہے. ہم سوچتے ہیں اتنے پتے نیچے گر گئے وہی اگلے سال کے لیے کھاد بن جاتے ہیں, تو کائنات میں کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی. کھلے دل سے, کھلے ہاتھوں سے, کھلے حساب سے اللہ کے راستے میں چلنا ہے. آگے دیکھ لیجئے کہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھنے والی یہ صورت جو اس وقت آپ کے میرے سامنے ہے کیوں, بہت کوشچن ہوتا ہے نا کہ جمعے کو یہ صورت کیوں پڑھے. تو آپ دیکھیے کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ایک نور روشن کر دیا جائے گا. کیوں؟ کچھ ہو منتر ہے, کوئی کھل جائے سمسم ہے؟ نہیں. آپ اگر اس کو ایک جسم میں پورے کو دیکھیں تو پوری صورت میں فتنوں سے بچاؤ کی تدابیر ہے, اور اللہ کا شکر اللہ کی رحمت سے ہم ایک دور قرآن پورا دور حاضر کے فتنے اور اس کا حل بھی کر چکے ہیں. کبھی یہ پچھلے چند سالوں میں ہی تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ 2020 کا تھا, یہ تھی کووڈ تھا ان دنوں, بالکل یہی تبھی یاد ہے. اور میں نے یہ بلیک ون سے کیا تھا یو کے میں. تو فتنوں سے بچاؤ کی تدابیر ہے پوری صورت میں. اللہ کو پتا تھا کہ قیامت سے پہلے بہت سارے فتنے اٹھنے والے ہیں, تو اللہ کے نبی نے یہ جو بتایا کہ جمعے کو پڑھو, اگر ترجمہ اور تفسیر سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو پھر ہی سمجھ آئے گا نا کہ مثلاً دین کا فتنہ آئے گا تو اصحاب کہف کے واقعے سے قصہ لیجئے گا, یعنی پہلا فتنہ اس میں دین کا ہے, اصحاب کہف کا قصہ جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیے کہ اس کے دو حل نیچے نوٹ کر لیجئے گا. نمبر ایک, نیک لوگوں کی صحبت اپنا لیں. اکیلا بندہ ڈوب جاتا ہے, اکیلی کشتی بھی ڈوب جاتی ہے. جب بہت سارے ساتھ مل جاتے ہیں نا تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے, تو ٹیم ورک از ڈریم ورک, اور اس وقت واقعی اس کی ضرورت ہے. اور دوسری بات ہے آخرت کا حصول ہی مقصد ہو. ہم بظاہر دین کا کام کیوں نہ کریں لیکن اگر ہماری نیت خراب ہے نا تو یاد رکھیے کہ وہ آخرت سے زیادہ دنیا کے لیے ہمارا کام ہونے لگے گا. پھر دوسرا قصہ باغ والے کا قصہ ہے جو مال کا فتنہ ہے, اور آج حقیقت میں دنیا تو دنیا, امت مسلمہ بھی اسی فتنے کا شکار ہے. حل میں مزید, حل میں مزید, بیماری ہے, پریشانی ہے, صحت خراب ہے, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, कमा रहे हैं तो कमा रहे हैं, बीवी से ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं तो हो रहे हैं। यानी हमारे कुछ भाइयों का तो ज़िंदगी का मकसद ही कमाना हो चुका है, उनकी तो हद ही नहीं। खाना खाते हुए तो हद है ना कि इसके बाद रुक जाना है, चलो जी ये पेट भर गया बस करो, ये कमाने की कोई हद ही नहीं है। और कुछ ख़वातीन की उजाड़ने की हद नहीं है, माफ़ कीजिए मुझे भी माजरत के साथ। यानी मर्द कमाने में लगे हुए हैं और औरतें उसको शॉपिंग और ये बेकार चीज़ों में लगाने में लगी हुई हैं। मकसद हयात बन गया, ज़रूरत है तो कोई नहीं रोकता, लेकिन जब विंडो वॉचिंग आदत हो जाए और देखें अब क्या नया आया है, अच्छा फेसबुक पे क्या बिक रहा है, अच्छा अब ऑनलाइन पे क्या आ रहा है, अच्छा नई चीज़ क्या आई, अब नया कौन सा मतलब एल्बम आ गया, ये वो, तो ये फिर ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। अब इसका इलाज क्या है? ज़िंदगी की हकीकत मालूम हो, और वो हमें नायतों में पढ़ते हैं कि ये बेसुबाती देख लो, तुम्हें पता है ये घर थोड़े दिन में टूटने वाला है, तो गुजारे का बना लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। और दूसरा इसका इलाज आखरत पे नज़र हो। तीसरा किस्सा इसमें मूसा और खिजर का है। बीच में एक और किस्सा आदम और इबलीस के नाते से है कि हर दौर में हर चीज़ को जो हमारे लिए चैलेंजिंग बना देता है वो शैतान है, तो लिहाजा अपने आप को देखो कि तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा गया। फिर मूसा और खिजर का किस्सा जो 15वें पारे में शुरू होके 16वें में पूरा होता है, ये इल्म का फितना है। इसका इलाज क्या है? कि आजजी इख्तियार की जाए और अपने इल्म पर गरूर और तकब्बुर ना किया जाए। फिर आखिरी किस्सा ज़ुल्करनैन का किस्सा है, इख्तदार का फितना। हुक्मरानी मिल जाए, वोट मिल जाए, लीडरशिप मिल जाए तो क्या करना है? और इसके दो इलाज है, इल्म और हुनर में इख़लास पैदा करो, यानी अल्लाह ने तुम्हें जो नेमतें दी हैं ना उसको लोगों के फ़ायदे में डाल दो। और हकीकत है कि मुसलमान हुक्मरान ऐसे ही थे। इंशाल्लाह जहाँ वो किस्सा आएगा वहाँ हम थोड़ी बात करेंगे। और इसका इलाज भी आखरत का हसूल मकसद हो अपनी सारी स्किल्स को यूज करने में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अगले जुमे को जब हम सूरह कहफ पढ़ें तो ये फ्लो चार्ट हमारी आंखों के सामने हो। आइए अब कंटिन्यू करते हैं रुकू नंबर 17 को, 32 से 44। टॉपिक है दुनिया की नेमतें इम्तिहान। और यहाँ नोट कर लीजिए, अभी हमने सुना है कि यहाँ से अब दूसरा फितना यानी हुब्बे दुनिया का फितना शुरू हो रहा है। वद्रिब लहु मसलर रजुलैन, और इन्हें इन दो शख्सों की मिसाल भी सुना दीजिए जिनमें से एक को हमने दो बाग अंगूरों के दे रखे थे और जिन्हें खजूरों के दरख्तों से हमने घेर रखा था और दोनों के दरमियान खेती लगा रखी थी, यानी आइडियल गार्डन था। ऐसा बाग बहुत कम होता है जिसमें सब्जा भी हो और पानी का प्रॉपर इंतज़ाम भी हो, और दोनों बाग अपना फल खूब लाए और इसमें किसी तरह की कमी न की, और हमने इन बागों के दरमियान नहर जारी कर रखी थी। अलगरस इसके पास मेवे थे। एक दिन इसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा कि मैं तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ और जत्थे के एतबार से भी बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ। इसको नोट कीजिए, फ्लॉन्ट करना, शो मारना, ठेंगे मारना, ये बुरा है। माल बुरा नहीं है, लेकिन माल के साथ जो बीमारियां और जरासीम और वायरसेस और बैक्टीरिया आ जाते हैं उसमें एक जगह के बंदा शो ऑफ करता है। किसी बहाने कोई आकर मेरा घर देख ले, हाउस वार्मिंग पार्टी, कोई नया डिनर सेट लिए, दोस्तों की सख्ती आ गई, आओ मेरे घर लंच, ताकि मैं दिल में सोचे बैठी हूँ कि आज तुम्हें वो डिनर दिखाऊंगी कि जिसके बाद फिर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये नहीं ठीक होता। जलाने के लिए खिलाना, जलाने के लिए पहनना, फलां जल गई, फलां का दुख हो गया, ये हुआ। देखिए वैसे रियल में कोई पकड़ कर किसी को आग में डाल दे कितना बड़ा जुर्म है, कोई भी नहीं पसंद करेगा, तो क्या हम जलाने के लिए लोगों को दिखाएंगे? और स्पेशली फिर आज इसका जो विजन बन गया, जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो है प्रोफाइल पिक्चर्स, और वो हमारे स्टेटस है, यहाँ गए थे वहाँ गए थे, भाई गए हम इंजॉय कीजिए, अब वहाँ भी कैमरे से खेल रहे हैं, हम यहाँ आए हुए हैं देखो पहाड़ों में कितना प्यारा। एक होते किसी को अल्लाह के करीब करना है, अल्लाह की नेमतें हैं, गौर व फिक्र है, तदब्बर है एक खास हद तक, तो उसमें आप कायनात की तस्वीरें बनाएंगे और जहाँ आप अपनी बनाई जाए, देखो मैं कहाँ पहुंची हुई हूँ और कुछ नहीं, तो उम्रे पे पहुंच के तस्वीरें खींच रहे हैं। और वही बात है कि वजारत मजहबी उमूर का मैसेज कि पहले लोग दुआओं के लिए हाथ उठाते थे और अब सेल्फीज के लिए, एक पिक्चर है आपके भी पहुंची होगी, यानी सऊदी अरब की वजारत मजहबी उमूर है, उन्होंने ये बात बताई है कि अब लोग हरम में आने के बाद भी उस खुशू और खुदू से इबादत नहीं करते जैसे पहले करते थे। और हर कल्चर में ये है, ये नहीं कि हमारे देसी कल्चर में ये जो फोन्स इजाद हो गए ये हर एक की ख्वाहिश है कि हमें मिल जाए, तो क्या पता चला कि ये कह रहा है कि देखो मैं कितना अमीर हूँ, देखो ऐसा हूँ, मेरे तो इतने नौकर हैं। जत्था क्या? वही जो पीछे यूसुफ के भाइयों ने बोला था ना, हमारे तो ऐसे से बड़े हैं, इतने मुरब्बे हैं जी, इतनी ज़मीनें हैं, इतनी फैक्ट्रियाँ, इतनी गाड़ी हैं, भाई हैं तो किसी को क्या लगे, आपको मुझसे क्या और मुझे आपसे क्या लगना, इसको अवॉइड करना चाहिए। और ये अपने बाग में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला, कहने लगा मैं ख्याल नहीं कर सकता कि किसी वक्त ये बर्बाद भी हो जाएगा, इसको नंबर टू करके लिख लें। माल के साथ एक ये जरासीम आता है, चूँकि अल्लाह मुझसे खुश है तो उसने मुझे दिया, चूँकि उसने यहाँ दिया तो वहाँ भी देगा, और चूँकि उसने दे दिया तो ये तो ड्यूरेबल है, ये तो इतना पक्का है, इतना मजबूत है, मैंने तो इतने महंगे ब्रांड का लिया हुआ है, ये तो अब कभी ख़राब ही नहीं होना। तीसरा फितना आगे नोट करिए, और ना मैं क़्यामत को कायम होने वाली ख्याल करता हूँ। दुनिया इतनी छोटी और इतनी बड़ी क़्यामत को आंखों से ओझल कर देती है, जितनी दुनिया से जाएंगे ना उतना दुनिया में दिल लगेगा और मरने को दिल नहीं करेगा। मैं अक्सर एक मिसाल देती हूँ, ज़रा मैं इधर देखिएगा, ये एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा मेरे सामने है, मेरा ख्याल है कि ये 4x6 इंच है, ठीक है। अब ये देखिएगा ज़रा, ये मैं इसको इधर कर रही हूँ, ये जितना मेरे से दूर जा सकता है ना, तो मैंने इसको दिया ना, तो ये जो फर्स्ट लेन में इस मिडल में एक सिस्टर बैठी है ना, बस मुझे ये नहीं दिख रही, इर्द गिर्द आप सब दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये ज़रा सा देखिए, मैं इसको यूँ करती हूँ, ये मेरे करीब आ रहा है, अब मुझे ये फर्स्ट रो में ये तीनों सिस्टर्स नहीं दिख रही, और अब मुझे आप में से कोई भी नहीं दिख रहा। ये टुकड़ा दुनिया है, दनुव दना यत्नु करीब कुर्बत, इसी को दुनिया कहते हैं, और अदना हकीर। ये दुनिया जितनी आपके साथ करीब होती है ना, जूम इन जूम आउट को लिख लें, ये आपका हॉल आखरत है, मकसद हयात है, अल्लाह के दीन के तकाजे हैं। फिर हमें दुनिया दुनिया ही दिख रही होती है ना, हमें दीन के तकाजे दिख रहे होते हैं, हम अपना बरा डाल देते हैं कि ज़कात दे तो दी और क्या करें, ना आपको आखरत दिख रही होती है। और ये दुनिया इतनी बुरी है कि फिर हमें इतनी बड़ी आखरत बुलाकर पीछे ले आती है। हमारे असलाफ क्या कहा करते थे, ऐ दुनिया मेरा पीछा छोड़ दे। एक बुजुर्ग कहा करते थे, ऐ दुनिया मैंने तुझे तलाक दी, ऐ दुनिया मैंने तुझे 3 तलाकें दी, मेरी जान छोड़ दे। और दुनिया एक बुढ़िया के तौर पे नाचती कूदती अक्सर दिखती है, कई चीज़ों में, ख्वाबों में और कई ताबीरों में दिखता है, तो क्या पता चला, और न मैं क़यामत को कायम करने लिए ख्याल करता हूँ। कहते ना जहाँ मिठा त्यों किन्ने डिठा, आपको तो नहीं समझ आना, किसी को भी नहीं आता, ये दुनिया मीठी तो आखिरत किसने देखी, ये नकद वो उधार, बस इससे बच जाएं तो दुनिया आपके लिए सोना है, इसी से तो आप आखिरत कमाएंगे। मौलाना रूमी कहा करते थे कि दुनिया आखिरत की कश्ती के चप्पू हैं, चप्पू समझते हैं ना, जिससे कश्ती चलती है, समंदर में पानी ना हो कश्ती कैसे चलेगी। तो पानी आपकी दौलत, आपका माल, आपकी गाड़ियाँ, आपके घर, बच्चे, स्किल्स, जो अल्लाह ने आपको मुझे बहुत दिया है माशाल्लाह, ये सब दुनिया की छोटी सी कश्ती, दुनिया में रहते हुए आखिरत की कश्ती को चलाने के ये चप्पू है, यानी वो कश्ती आखिरत है। तो आप पानी को हांकेंगे, पानी के जरिए उसको पुश करेंगे, तो माशाल्लाह नेकियां होंगी। पैसे के बगैर कुछ होता है आज? कुछ भी नहीं होता, तो कभी भी नहीं होता आज, क्या कभी भी नहीं कुछ होता। अब हुआ क्या, मज़े की बात देखिए, पानी कश्ती के बाहर था तो आखिरत की कश्ती चल रही थी, और आज जब वो दुनिया कश्ती के अंदर आ गया तो डूब जाएगी। बस ये समझ लें, दुनिया हाथों में रहे दिल में न रहे, और एक ख़ास हद तक हो, पानी की भी ख़ास मकदार हो तो कश्ती चलती है, वरना डूबने का डर है। फिर कहने लगा, और अगर बिलफर्ज़, यानी इट्स नॉट पॉसिबल, लेट से इफ़ इट हैपन, क्या बिलफर्ज़ मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया, तो यकीनन मैं इस लौटने की जगह से इससे भी ज़्यादा बेहतर पाऊँगा। ये पांचवा जरासीम है, चूँकि अल्लाह ने मुझे इधर दे दिया तो वहाँ भी देगा, भला उसने देना नहीं। खैर, अल्लाह बचा के रखे इन सारे फितनों से। उसके साथी ने इससे बातें करते हुए कहा, क्या तू इस माबूद से कुफर करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुझे पूरा आदमी बना दिया, लेकिन मैं तो ये अकीदा रखता हूँ कि वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करूँगा। दौलत दोनों के पास थी, लेकिन इसके पास दूसरी दौलत भी थी, और वो दीन की और तौहीद की दौलत थी। तो कितने खूबसूरत तरीके से उसको नसीहत करता है, ऐसी सिस्टर्स को अपनी दोस्त बनाए कि जो आपको बहकने ना दें, बल्कि ज़रा सा फ्लॉन्ट करें तो वो आपको फौरन अल्लाह की तरफ माइल कर दें। तूने अपने बाग में जाते वक्त क्यों ना कहा कि अल्लाह का चाहा होने वाला, नसीहत क्या करे, ये बोल माशाल्लाह, कोई ताकत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कमतर देख रहा है, बहुत मुमकिन है कि मेरा रब मुझे तेरे इस बाग से भी बेहतर दे और इस पर आसमानी अजाब भेज दे, तो ये चटियल और साफ मैदान बन जाए। क्या पता चला, होपफुल। और उसको बता रहा है कि इतना ना करो, क्या पता कल तेरी चीज़ मेरे पास और मेरी चीज़ तेरे पास आ जाए, क्योंकि तिल कले या मनुदा विलुहा बैन नास, ये वो दिन है जो हम लोगों के बीच में घुमाते फिराते रहते हैं। ये इसका पानी नीचे उतर आए और तेरे बस में न रहे कि तू इसे ढूंढ लाए और इसके सारे फल घेर लिए गए, यानी वही युवा जिसका डर था। बस वो अपने इस खर्च पर जो इसने इसमें किया था अपने हाथ मलने लगा और बाग तो ऊंधा उल्टा पड़ा था। और वो शख्स ये कह रहा था कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को भी शरीक ना करता, इसकी हिमायत में कोई जमात ना उठी कि अल्लाह से इसका कोई बचाव करती, और न वो खुद ही बदला लेने वाला बन सका। यहीं से साबित है कि इख्तियारात अल्लाह बरहक के लिए हैं, वो सवाब देने और इंजाम के एतबार से बहुत ही बेहतर है। ये है जी दुनिया का दजल, इसको दजल कहते हैं। ये जो लफ्ज़ दज्जाल है ना, ये दजल से है। दरिया दजला का नाम भी सुना होगा, फ्रेब, धोखा। चीज़ है कुछ, दिखे कुछ, आंखों से वो देखने में मतलब दूर से पानी दिखे, करीब जाए तो वो धूप हो। तो दुनिया के इस खूबसूरत रूप के ऊपर से विनीर उतारना है। आज ना हम दुनिया से दौलत को ख़त्म कर सकते हैं, आज इस चीज़ ने मुसलमानों को बिल्कुल कई जगह हाथ छोड़कर जीने वाला बना दिया, और कुछ बिल्कुल दो दो हाथ से दुनिया कमा रहे हैं। बैलेंस रखिए, दुनिया भी कमाएं। अलकासिबु हबीबुल्ला, सच्चा ताजिर सिद्दीकों और शुहदा के साथ होगा। लेकिन इसमें हराम हलाल को भी देखिए, अपनी नमाजों को मैनेज कीजिए, हक वालों के हक दीजिए, डंडियाँ ना मारिए, तो दुनिया बुरी नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको दुनिया दी है तो सोचा करें कि मेरी इस चीज़ से क्या आखिरत बन सकती है। यकीन करें, आप जब ये नज़र मांगेंगे, अल्लाह आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ देगा कि यहाँ अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ तो बहुत पर्सनल बात हो जाएगी। हम अपनी ज़ाती चीज़ों को भी ज़ाया कर देते हैं, खाने समेत, कपड़ों जूतों समेत, हर चीज़ से आखिरत कमाया करें, आखिरत कमाया करें। क्योंकि अल्लाह ने एक एक चीज़ का हिसाब लेना है। आपने अगर खाना खाया सुबह, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत नेकियां कर चुके हैं, अब तो हजम भी हो गया होगा, हिसाब हो गया। हिसाब क्या होता है? हजम हो गया, इतनी कैलोरीज खाई थी, उससे इतना ग्लूकोज बन गया है, इतनी हरारत बनी, इतनी फैट बनी, अब यूटिलाइज हो रही है। जो काम आप कर रहे हैं और आपकी नेमतें उसमें यूज़ हो रही हैं, हिसाब साथ साथ बैलेंस है। एंड पे सिर्फ अल्लाह ने लास्ट फिगर चेक करना है, जहाँ वो अकाउंट्स में चेक करते हैं ना एंड ऑफ द ईयर, अच्छा ये है दी रिटर्न, ये इनकम, ये लॉस, ये इस साल का प्रॉफिट, ये फला और फला, ये होना है उनका, जो साथ साथ चेक एंड बैलेंस करते हैं। ये खाया, इसे क्या मिला, इसे क्या लेना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप 50 लोगों की इफ्तारी कराएं और उसमें से 30 लोग मगरिब के लिए ना उठें, सोचिए ना। और फिर जो बाकी 20 भी हैं वो उसके बाद सिगरेट पानी में लग जाएं और बाद में कहते इफ्तारी की गुंजाइश नहीं, चलो ज़रा चलते हैं, बड़े दिन से फिल्म नहीं देखी, फिल्म देखा है। आपका 50 का खाना ज़ाया हो गया है, ये ना करें। मोमिन कयस है, एक रुपया, एक डॉलर, एक क्रोन, एक यूरो, एक पाउंड, बाकी करेंसी आप गिन लें, वो ज़ाया नहीं करता कि मेरा तो बेकार हो गया। एक अच्छा कारोबारी शख्स कभी 1 लाख भी ज़ाया करने के लिए लगाता है कि चलो 1 ही लाख है, डूब गया तो डूबने दो, वहाँ तो हम 1-1 हज़ार का हिसाब लगाएंगे। तो मोमिन के पास दुनिया बड़ी कीमती है। मुझे किसी की बात याद आ गई, अब्दुल्ला बहावलपुरी साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, थे प्रोफेसर लेकिन बड़े सादा मिजाज थे, बल्कि मैंने सुना है कि धोती पहन के कॉलेज में आते थे। तो प्रोफेसर तो थे लेकिन साथ दीनी रुझान था, तो बच्चों को दीन भी सिखाते थे। तो उनका मैंने एक किस्सा उनकी ही कैसेट से सुना था बहुत साल पहले। बच्चे को भेजा, जा रोटी लेकर आओ, पैसे दे दिए उस दौर के हिसाब से। तो कहने लगे वापसी पे क्या पैसे बचे? कहा अब्बा वो 54 बची थी, मैं तो वहीं छोड़ आया। जैसे हम कहते हैं कीप इट, उन्होंने कहा जब वापस लेके आ। अब्बा 54? कहने लगा तुझे पता है इसकी एक ईंट आ जाती है, उस दौर में आती होगी, और वो एक ईंट लेकर किसी मस्जिद जो बन रही थी ना उसमें लगवा देता तो तेरा हिस्सा बन जाता। ये लखलोटियाँ नहीं अच्छी होती, क्या होता है इस ओके ये नहीं वो नहीं, तो ज़ाया ना कीजिए। एक छल्ला, एक रुमाल, एक कपड़ा, एक जूता, एक पर्स, इसको ज़ाया नहीं करें, सलीके से खुद इस्तेमाल करें, किसी दूसरे को दे दें, किसी दूसरे से तीसरे को। वही चीज़ें आपकी किसी अच्छे कॉज में यूज़ हो जाएं, और क्या चाहिए आपको? आपका शौक पूरा हो गया, किसी दूसरे को दे दें। आपकी ज़रूरत पूरी हो गई ना, अब ये किसी और की ज़रूरत पूरी करें। हमारे यहाँ हर शादी पे देहात नहीं शुरू हो जाते? 5-5 लाख रुपए जेब में रख के एक आम मतवसत मर्द अपनी घर की औरतों और बच्चों के कपड़े बनाता है। जब 3 दिन की शादी हो, जाके अपने मियाँ से पूछिएगा, वो बच्चे की जो शादी हुई थी उसमें कपड़े कितने के बने थे, आपको भी पता होगा। और 5 लाख का आपने जिहाद किया, 2-3 माह बाद आपकी बहन आपकी सहेली के घर शादी आ गई, उसके मियाँ गरीब को भी आपने उसी 5 लाख के जिहाद में जो डालना है, तो अपने कपड़े उसको दे दीजिए। क्या हो जाएगा? आप इतने अछूत हैं, आप इतने गंदे हैं, और इतने महंगे कपड़े आपने अपने फैमिली में पहन लिया, आपने शौक पूरा कर लिया, पहन ले। उसको को बहन तुम ये पहन लो, अच्छा क्या कितने का बना, क्या बना, आपका दिल करता है आप पैसे ले ले, आप कहते नहीं ये लेके तुम अच्छी कॉज में डाल दूंगी, इसमें डाल दूँ। हमारा एक पूरा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिल में डाला था, और ये मेरा ब्रेन चाइल्ड था। आज से कुछ साल पहले हमने इसको किया था नॉर्वे में, जादू तकवा के नाम पे। किसी को पता भी नहीं होगा इधर, क्यों? क्योंकि उस साल हमने हज का प्लान किया था अपने लिए कि ग्रुप लेके जाएंगे, तो काफ़ी महंगा था हज, तो कुछ लोगों के लिए मुश्किल था फैमिली या दो बंदों का जाना। तो मेरे तक जब बात पहुंची तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए कि अब अगर इनका एक का नहीं है तो हम ऐसा करते हैं कि इनको शॉर्ट लोन्स देते हैं, छोटे से टाइम बाउंड लोन देकर। तो बहरहाल वो चलता गया, हर गिफ्ट जो मुझे मिलता है, जो मेरे अपने प्यारे दे दें, मुझे कोई चाहत वाला दे 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 दे, वो सब उसमें जाता है। हर कपड़ा मैं एक आध दफ़ा अपने शौक से पहन भी लूँ, उसको साफ कर करा के धुला के उसमें जाता है। अपने ही साथी खरीद के ले जाते हैं, और उनकी भी मौजें और स्कूल का भी फायदा, और मेरे पास तो अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं। क्या हुआ उसे, क्या नुकसान हुआ? पूरी पूरी शादियों के जोड़े, दुल्हनों के जोड़े, जेवरात, कपड़े, हम हर वक्त ये बाजारों और दुकानों के फेरे क्यों लगाते हैं? हम दोस्त को जो कह रहे हैं, हाय इतना प्यारा जोड़ा किधर से बनाया, अब वो भी छुपा रही है अल्लाह की बंदी, सच तो उसने भी नहीं बोलना, तो आप उसी से ले लें। आप पहन चुकी हैं, एक दफ़ा मैं पहन लूँ, अच्छा आप पहन लेंगी, अच्छा कैसे दिल मानता है वो पहन के आपको फिर वापस दे दे, आप ड्राई क्लीन करके पहन ले, क्या हुआ? कहते हजरत आयशा ने जो जोड़ा शादी पे पहना था, मदीना की अक्सर लड़कियां वही जोड़ा पहनती थी शादी पे, वो जोड़ा फिर वापस जाता था। आज के आपके गोरे, आपके मेरे गोरे, दूसरों के थोड़ी हैं वो तुम्हारे इतने करीब हैं दिल के। $500 आज से कोई 15 साल पहले की मैं आपको रिवायत दे देती हूँ, $500 का जोड़ा बनता था, वेडिंग ड्रेस जो व्हाइट नहीं होता, लॉन्ग ड्रेस जो गोरियां पहनती हैं, गोरों के पास $500 नहीं होता था। वहाँ दुकानें, हम मस्जिद से अपने घर जाया करते थे, जहाँ ह्यूस्टन में हम रहते थे, तो रास्ते में एक दुकान थी, तो मैं पूछती थी ये क्या वेडिंग ड्रेसिंग, मैं समझी के बिकते हैं। जिनको पता था उन्होंने बताया कि ये किराए के कपड़े हैं, यहाँ से लोग आते हैं लेके जाते हैं, पहन के ड्राई क्लीन करा के उस वक्त को $50 $100 में वो जोड़ा बन के पहन पहुन के 2-4 घंटे में, और दोबारा कभी कोई पहनता? वो कोई 10 गज लंबी टेल वाला कोई फ्रॉक पहनता? ये हम अकलमंद है माशाल्लाह, 5-5 लाख का दुल्हन का जोड़ा, और एक नहीं 3 दिन के जोड़े, पहला दूसरा तीसरा, और फिर बाद में नाप बदल जाएगा, सास को गुस्सा और भी आना है कि अभी बहू बेगम आपको इतना मोटा होने की ज़रूरत क्या थी, अभी तो ये मैंने जोड़ा आपको कुछ 4-6 शादियों में पहनाना था, विदा का विदा पे, और वलीमे का वलीमे पे, और मेहंदी का मेहंदी पे। पहले दौर में तो ऐसा होता था, अब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन आग लगी हुई है। जो मैंने दुनिया देखी है ना, मर्द बूढ़े हो गए, मर्दों की जान पे बन गई, सूख के कांटे हो गए, लेकिन हम औरतों के लाड़ चाव नहीं पूरे हुए। पहनने का शौक सबको होता है, आपको अगर इतनी शौक है तो आप दूसरे तरीके से यूज़ कीजिए। तो बहरहाल ये दुनिया का फितना था जो हम औरतों में बहुत है, माफ़ कीजिए, कमाते मर्द हैं और लगाते हम पे, इल्ला ये कि किसी मर्द को भी इतना शौक हो कि उसकी पूरी वॉक इन क्लॉजेट हो, तो उसकी बात है, करिए, मना नहीं है, लेकिन उसका रीयूज रीसाइकिल बहुत अच्छा करें। तो बहरहाल एक हदीस सुन लेते हैं, यहाँ जो ला हौला वला कुव्वत की बात हुई 39 आयत में अबू मूसा अलअशरी से, हम नबी सल्लम के साथ एक सफ़र में थे, आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं इस वक्त ज़ेरे लब कह रहा था ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, अल्लाह के नबी ने फरमाया अब्दुल्ला बिन कैस कहो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, क्योंकि ये जन्नत के ख़जानों में एक ख़जाना है। या नबी सल्लम ने ये फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसा कलमा बताना बताऊँ जो जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। पिछले किस्से से आपने क्या सुना था? इंशाल्लाह। इसमें आप क्या सुन रहे हैं? माशाल्लाह और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। रिवायत है एक और, तबरानी की रिवायत 951, अनस रावी हैं, जिस शख्स पर भी अल्लाह माल अहल या औलाद की कोई नेमत फरमाए तो वो माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला कहे, तो अल्लाह ताला इस पर मौत के अलावा कोई नागहानी आफत नहीं भेजता। याद कीजिए इसको, कितना प्यारा कलम है। और हम तो पता नहीं ऐसे ही कह देते हैं माशाल्लाह, या जरी टोन बना के भी कहते हैं ला हौला वला कुव्वत, तो बल्कि हम गलत चीज़ देख के कह रहे होते हैं। हालांकि क्या, कोई ताकत नहीं मगर अल्लाह की, वमा तौफीक इल्ला बिल्ला। अगर कोई मेरे से नेकी हो जाती तो मेरी कहाँ औकात थी, ये अल्लाह की तौफीक है। तो ये कलिमात तर्जुमे को सामने रखते हुए आम कीजिए, इससे भी अकीदा बहुत दुरुस्त होता है अल्लाह की रहमत से। खैर, उसके बाद अल्लाह के नबी ने यही आयत पढ़ी जो हम पढ़ के आए हैं, वलौला इस दखल तक जन्नत तक कुल तमा शाह ला कुत अल्ला बिल्ला। और इसमें एक बड़ा प्यारा अदब भी है, अपनी चीज़ों को तो देख कर इंसान करता ही है, कहता ही है, दूसरों की चीज़ों को देख कर भी कहा करें। देखिए, हम दुनिया में चलते फिरते मिलते हैं ना, कभी अपने भाई बहनों के घरों में जाते हैं, कभी दोस्तों के, कभी किसी भी जगह जाते हैं। आप इस घर में आते हैं, आपको इनका गार्डन अच्छा लगता है, क्या कहा करेंगे, माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, साथ ही दुआ दिया करें क्या। और एक दुआ हिर्ज़े जान है कि अल्लाह आपको जन्नत में इससे अच्छा घर दे, अगले की तवज्जो सारी उधर डाल दें। अच्छा, अल्लाह ने आपको इधर दिया, अल्लाह आपसे इस घर में नेकियां ले ले। अच्छा, अल्लाह ने आपको ये अच्छे कपड़े दिए हैं, अल्लाह आपको जन्नत में भी अच्छे दे। दुल्हन प्यारी लग रही है, अल्लाह ये जोड़ा जन्नत तक का साथी हो। ये मीठी मीठी दुआएं जो होती है ना, एक तो दूसरों के दिल में आपकी मोहब्बत भी लाएंगी, और दूसरी बात है कि वो इधर ही नहीं खो जाएंगे, वो कहेंगे हाय अच्छा जन्नत में भी अभी जाना है, अच्छा जन्नत का भी घर है, अच्छा जन्नत। वो ला मुहाला तौर पर हमारी सोच का किबला सीधा होगा। तो बहरहाल, अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए आपने मैंने क्या सीखा इसमें, रब के साथ किसी को शरीक नहीं करना, नफ्स पे जुल्म नहीं करना, आखिरत का इनकार नहीं करना, बुरे आमाल पर रब से बेहतरीन मुकाम पाने की उम्मीद नहीं रखनी, शुक्रगुजार होना है, तमाम इख्तियार अल्लाह का है, इस पर ईमान लाना है।